بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كل جو سلسلہ شروع کیا تھا ویسے یہ موضوع تو بڑا طویل بھی ہے تفصیلی بھی ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی بہت سارے رسائل ہیں. میں آپ حضرات سے خصوصیت کے ساتھ بہت تاکید سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بیماری کو معمولی نہ سمجھیں, اور اس موضوع پر ہمارے اکابر کی جو چیزیں ہیں تحریری شکل میں ان کو بار بار دیکھیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عابتی میں جو یہ عنوان قائم کیا ہے وہ دیکھو, حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ کل اس میں سے کچھ سنایا تھا بن نظری کے متعلق, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تصانیف مواعظ وغیرہ میں اس موضوع سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو حضرت مفتی زید صاحب نے الگ رسالے میں جمع کیا ہے, وہ رسالہ بھی ملتا ہے وہ بھی خرید لو. ابھی مفتی فاروق صاحب بیرٹھی دامت برکاتہم کا انہوں نے اپنے خانقاہ کے اندر اسی موضوع پر کئی روز تک جو بیان دیا تھا وہ چھپ کر کے آیا ہے, بہت اچھا ہے. اس میں بھی واقعات اور بھی بہت ساری چیزیں عبرت کی ہیں, وہ لکھو اس کو. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے جو مختلف مضامین ان کے اصلاحی خطبات میں اور اصلاحی مجالس کے اندر اس موضوع سے متعلق ہیں, دیکھو. اہل علم حضرات ہیں آپ, یہ چیزیں دیکھنے کی ہم لوگ اخبارات اور ادھر ادھر کی لغویات میں پڑے رہتے ہیں. اپنی بیماریوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اس کی گویا اس کے علاج کی طرف اور اس کی درستگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے, یہ ہمارا فریضہ ہے. اس لیے اب اس موضوع سے تفصیل میں نہیں جاتا, البتہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک دو باتیں لکھی ہیں وہ سنا دیتا ہوں اہمیت کے پیش نظر. اندر تو واقعات وغیرہ بہت کچھ ہے, پہلے بھی بہت سنا چکا ہوں میں زبانی اگلے سالوں میں. حضرت فرماتے ہیں میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک زمانے میں جبکہ جناب الحاظ حافظ قمر الدین صاحب نور اللہ مرقدہ بیمار تھے تو ان کی نیابت میں جامع مسجد سہارنپور پانچوں وقت اور نماز پڑھانے کے لیے مدرسہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے. حافظ قمر الدین صاحب جو ہیں وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اور سہارنپور جامع مسجد کے امام تھے. حضرت جس زمانہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے, مدرس تھے, تو حافظ قمر الدین صاحب کچھ بیمار ہوئے, ان کی بیماری کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب نماز کی امامت کے لیے وہاں جامع مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے مظاہر سے. عصر کے وقت جا کر مغرب کی نماز پڑھا کر تشریف لایا کرتے تھے. اس تشریف بنی میں یہ ناکارہ بھی کبھی کبھی ساتھ ہوا کرتا تھا. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں ہمیشہ غور سے دیکھتا تھا کہ مدرسے سے لے کر جامع مسجد تک اپنے پاؤں پر نظر جمائے رہتے تھے کہ بازار میں کوئی راستہ تھا, یعنی جو لوگ جانتے ہیں سہارنپور سے واقف ہیں, مظاہر سے لے کر جامع مسجد تک پہنچنے کا پورا راستہ بازار ہے. لیکن کہا حضرت ماں الیاس صاحب مگر نگاہ کبھی بھی ادھر ادھر دکانوں پر نہیں پڑتی تھی, ہمیشہ پاؤں پر نگاہ. یہ ہمارے اکابر اپنی نگاہ کی, ہم تو قصدن یہ کرتے ہیں, یعنی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قصدن ایک آدمی گویا زہر کو زہر سمجھ کر کے پھر اس کو اپنے منہ میں ڈالے, کیا مطلب؟ ایک تو اتفاقیہ کوئی نظر پڑی, ہمارے اکابر تو اتفاقیہ نظر سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا, حضرت فرماتے ہیں جب کسی بڑے اسٹیشن کے اوپر दो ट्रेनों का मेल होता है। मेल का मतलब यह होता है जैसे सूरत का स्टेशन आप जाते आते रहते हैं, एक ट्रेन बम्बई की तरफ जा रही है, एक प्लेटफार्म पर खड़ी है, दूसरी ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जा रही है और दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी है। अब ये एक आदमी हजरत हरमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो इस तरह हो तो मैं उस वक्त अब सामने वाली ट्रेन की खिड़की पर कभी नजर नहीं करता, इस डर की वजह से कि कहीं कोई औरत बैठी हुई हो खिड़की पर और ये समझ कर कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, उसका चेहरा खुला हुआ और उस पर नजर पड़ जाए। इस एहतमाम, इतना बचने का एहतमाम, अपने आप को बचाने का एहतमाम। ये हमारे अकाबिर जो तकवा और तहारत के इतने ऊंचे मकाम पर थे, वो अपने नफ्स पर कभी भरोसा नहीं करते थे और अपने आप को बचाने के लिए इतना एहतमाम करते थे। और हम कसदन मोबाइल लेकर बैठ जाएं और उसमें सब चैटिंग करने लगे, सब करने लगे, क्या मतलब है? ये तो गोया अपने आप को बर्बाद करना है, अपनी कोशिशों के ऊपर पानी फेर देना है। इसलिए इस ये जो मुसीबत है इससे तो अपने आप को बचाइए अल्लाह वास्ते। ये जो मोबाइल वाला और इस तरह का सिलसिला है इससे जरूर बचिए। और अपने हजरत फरमाते, अपने हजरत यानी हजरत मां खलील अहमद साहब कुद्दस सिरहु को भी बारहा देखा कि रास्ते में तशरीफ ले जाते वक्त बहुत कम निगाह ऊपर उठाते थे, जमीन ही पर अक्सर निगाह होती थी। कि हमारे अकाबिर का मामूल बतलाया जाए। दूसरी चीज जो इसमें से जरा सी सुनानी थी, हजरत फरमाते हैं ये निहायत ही मोहलिक मर्ज है, एक तजर्बा तो मेरा भी अपने बहुत से अहबाब पर, हजरत अपने मुरीदीन और शागिर्दों को अहबाब से ताबीर करते हैं हमेशा, तो मेरा भी अपने अहबाब पर है कि जिक्र शुगल की इब्तिदा में लज्जत और जोश पैदा होता है और उस जोश से इबादत में एक लज्जत पैदा होती है, मगर इस बदनजरी से सबसे पहले इबादत की हलावत और लज्जत फना हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इबादत के छूटने का जरिया भी बन जाता है। जो बैत होते हैं बहुत से आए, आपसे जब बैत हुए एक महीने तक दो महीने तक मामूलात की बराबर पाबंदी रही, फिर धीरे धीरे छूटे, वो जो माहौल में जाते हैं तो वहां जाएंगे तो अब वो असल तो है कि तौबा का बार बार एहतमाम किया जाए। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग हजरत से अर्ज करते कि आपकी खिदमत में आते हैं तो फिर जरा जी लग जाता है, कुछ दिन घर जा करके फिर वो ठीक रहता है, फिर वो पुरानी आती है। तो हजरत फरमाते थे भाई मैं तो धोबी हूँ, हजरत जवाब में अजीब मिसाल दी, मैं तो धोबी हूँ, तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएं तो यहाँ ले आओ मैं धो दूंगा। कपड़ा एक मरतबा धो लिया तो उसका मतलब ये थोड़ा कि अब दूसरी मरतबा धोने की जरूरत नहीं है, आप पहनेंगे तो मैला होगा, उसको तो धोना पड़ेगा ही। तो हम जिस माहौल में रहते हैं वहां गुनाहों से वास्ता पड़ता ही है। आप यूं समझ लें कि 10 दिन यहां गुजार लिए खानकाह में तो जिंदगी भर के लिए काफी हो गए, ये तो गलत है। जिंदगी भर क्या, एक महीने के लिए भी काफी हो जाए तो गनीमत है। इसलिए बार बार अपने आप के लिए अपना इन चीजों का जायजा लेने की जरूरत है। बहरहाल ये जो जिक्र शुगल करने वाले अहबाब है उनके लिए भी बड़ा अलम ही आएगी, ये बदनजरी ही की वजह से फिर ये अजकार छूटते हैं, मामूलात छूटते हैं और फिर वही पुरानी हालत लौट, और फिर उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि आप जो हैं उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि हम तौबा का अहतमाम करें। तौबा तो जैसा कि मैंने कल अर्ज किया तो रोजाना करनी, रोजाना करो तौबा, रोजाना कोई अपने आप को एक गुसल दे दो, समझा गया, उससे बहुत फायदा है। तौबा और इस्तिग़फ़ार की जितनी आप आदत डालेंगे तो आपको बहुत फायदा रूहानी एतबार से पहुंचेगा, लेकिन ये शैतान जो है ना उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होने देता। दोबारा एक चीज तो ये थी, ये हजरत ने ये जज़ाउल आमाल एक छोटा सा रिसाला है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मुफीद मौसिर, अहले इल्म को चाहिए बार बार देखें। हजरत माना इल्या साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख ने लिखा है आप बीती में, हजरत माना इल्या साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ताकीद फरमाते थे उसको बार बार देखने के लिए। मुख्तसर रिसाला है लेकिन बहुत ही, तो हजरत ने उसमें एक फसल आखिर में बाज़ गुनाह जिनसे एहतराज़ ज़रूरी है ऐसे गुनाह के बयान में, ऐसे गुनाहों के बयान में कि उनसे बचने से बफजली ताला करीब करीब तमाम गुनाहों से नजात हो जाती है। ये चंद गुनाह ऐसे बतलाए कि उनसे अगर आदमी बचेगा तो तमाम गुनाहों से नजात मिल जाएगी। उन्हीं में मैं मुझे जो आज बयान कर वो तो बाद में बतलाऊंगा। एक उनमें से गैर महरम औरत या मर्द से किसी किस्म का इलाका रखना, हाँ उसको देखना या उससे दिल खुश करने के लिए हम कलाम होना या तन्हाई में उसके पास बैठना या उसके पसंदे तबा के मुताबिक उसको खुश करने को अपनी वजा लिबास वगैरह या कलाम को आहिस्ता और नर्म करना। हजरत फरमाते हैं मैं सच अर्ज करता हूँ कि इस ताल्लुक से जो खराबियां पैदा होती हैं और जो जो मसाइब आते हैं इहाते तहरीर से खारिज हैं। मैं सच अर्ज करता हूं कि इस ताल्लुक से जो खराबियां पैदा होती हैं और जो जो मसाइब पेश आते हैं इहाते तहरीर से खारिज हैं। इसको सुनाना था इसलिए मैंने ढूंढवाए थे, कोई बात इनको ध्यान रखना दीजिएगा। एक चीज वही निगाह से मुताल्लिक, मुफ्ती सलमान साहब ने वहाँ हजरत अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब रौज़तुल मुहिब्बीन, बहुत अजीब व गरीब किताब है, अहले इल्म देखें बड़ी। एक तो उनकी जो रवानी है तहरीर की, आदमी लेके बैठता है तो छोड़ने को जी नहीं चाहता पूरी किताब पूरे किए बगैर। उसमें से माना मुफ्ती सलमान साहब ने अगर कोई शख्स हिम्मत कर लिख करके अपने को बदनजरी से बचाने की कोशिश करे तो उसे इंशाअल्लाह दर्जे ज़ैल फवाइद ज़रूर हासिल होंगे। चुनांचे अल्लामा इब्न कय्यिम अपनी किताब रौज़तुल मुहिब्बीन में लिखते हैं, नंबर एक क्या क्या फवाइद हैं बद नज़री से बचने पर। नंबर एक, दिल बेफायदा हसरत और अफसोस से नजात पाएगा, क्योंकि जो आदमी नज़र को आज़ाद छोड़ देता है वो हमेशा हसरत में रहता है, इसलिए कि जिस पर नज़र पड़ी है वो उसे अक्सर हासिल नहीं हो पाएगी और देखने वाला ख्वामखा तड़पता रहेगा। इससे पता चला कि दिल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नज़र की लापरवाही है, और ये बदनज़री दिल पर ऐसे ही वार करती है जैसे तीर शिकार पर वार करता है, या यूं कहिए कि ये बदनज़री आग का वो शरारा है जिसे खुश्क घास में डाल दिया गया हो तो या तो वो सब की सब जल जाएगी, नहीं तो कुछ न कुछ तो जरूर जलेगी। यही हाल बदनजरी का भी है कि उससे पूरा दिल न जले मगर कुछ हिस्सा तो जरूर सुलगने लगता है। नंबर दो, दूसरा फायदा, जो आदमी नजर की हिफाजत करता है उसके दिल में ऐसी नूरानियत पैदा होती है जो उसके चेहरे और आंखों से उजागर होती है, जबकि नज़र की बेहतियाती की वजह से चेहरे पर फिटकार रहती है। चेहरा बेनूर, हदीस के अल्फाज हैं, लतगुद्दन अबसारकुम वला तहफिजन फुरूजकुम औ लयक्सिफन अल्लाह वुजूहकुम, कि अपनी निगाहों को नीचा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर देंगे। कैसा ही हसीन आदमी हो बद निगाही में जो मुब्तला होता है आप चेहरे को देखेंगे ऐसा मालूम हवाइयां उड़ रही, चेहरे पर नूर नहीं होता, एक वहशत सी मालूम होती है। तो बहरहाल जबकि नजर की बेहतियाती की वजह से चेहरे पर फिटकार बरसती, गालिबन इसी वजह से अल्लाह ताला ने गद्दे बसर की आयत के बाद अल्लाह नूर समावात वलद वाली आयत नाजिल फरमाई जिसमें नूरानियत का जिक्र है। अल्लाह इब्न कय्यिम ने अजीब मुनासिबत बतलाई है। तीसरा फायदा, बद नजरी से बचने वाले शख्स को अल्लाह ताला कल्बी बसीरत और फिरासत से सरफराज करते हैं जो दिल की नूरानियत का लाजिमी असर है। बस ऐसा आदमी फितनों से और गलत रवि से महफूज रहता है। चौथा फायदा, बद निगाही से बचने वाले शख्स के दिल पर उलूम नबूवत का फैजान होता है, जबकि बदनिगाही का मरीज आदमी कल्बी जुल्मत का शिकार होने की वजह से इल्म के नूर से महरूम रहता है। नंबर पांच, जो शख्स हिम्मत से काम लेकर नजर को गलत जगह इस्तेमाल होने से बचाता है اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت اور بہادری سے سرفراز فرماتے ہیں، جبکہ بد نظری کا شکار شخص ہمیشہ کم ہمت اور بزدل بنا رہتا ہے۔ نمبر 6، غد بصر کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ عفت مآب شخص، یعنی جو آدمی اپنی عفت کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ دل میں خاص فرحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بد نگاہ آدمی کو ہرگز حاصل نہیں ہو پاتی۔ 7، عفیف النظر شخص لذت اور شہوت کی قید سے نجات پاتا ہے اور حقیقی آزادی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ 8، نظر کو قابو میں رکھنے والا اپنے اس عمل عظیم عمل کی بدولت گویا کہ اپنے اوپر جہنم کے دروازے کو بند رکھتا ہے، کیونکہ بد نظری شہوت کا ایک اہم دروازہ ہے جو انسان کو بدعملی میں مبتلا کر کے جہنمی بنانے کا عموماً سبب بن جاتی ہے۔ 9، نظر کو محفوظ رکھنے والے کی عقلی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی قوت حافظہ اور دور اندیشی کی صلاحیت مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ 10، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نظر کو قابو میں رکھنے سے شہوت کے شر سے آدمی محفوظ رہتا ہے، جبکہ بد نظری کرنے والے کی زندگی مدہوشی اور غفلت میں گزرتی ہے۔ اس لیے یہ بہت نقصان ہے، میں نے کہا نہیں کہ اس وقت ہمارے اس راہ کے لیے سب سے بڑا جو ہے خطرناک کوئی نقصان دینے والا کوئی عمل ہے تو وہ یہی ہے، بد نظری۔ اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ آج کی مجلس میں ارادہ یہ تھا کہ وساوس اور خیالات کے متعلق کچھ عرض کروں۔ عام طور پر جو لوگ دین کی راہ پر چلتے ہیں، دیندار بننے کے لیے محنت شروع کرتے ہیں، وہ وساوس اور خیالات کا شکار ہوتے ہیں، آ کر فریاد کرتے ہیں یہ وسوسہ آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے۔ جو آدمی کافر ہے، فاسق ہے، فسق و فجور میں لت پت ہے، اس کے لیے یہ شکایت نہیں، اس کو کائی کو شیطان کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بغیر کہے ہوئے چل رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وساوس کی وجہ سے عام طور پر جو پریشان رہتے ہیں لوگ، اور آ کر کے بعد نوجوان جو ابھی دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ اس وساوس کی وجہ سے ایسے پریشان بعد میں تو آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں صاحب ہمارا ایمان تو نہیں چلا گیا، بھائی کیا وسوسہ آیا۔ ان کو کتنا ہی سمجھاؤ، کتنا ہی آمادہ کرو، تر کیا آپ ذرا بول کے نہیں بولے گا ہی، وہ یوں سمجھتا ہے اگر میں بولوں گا تو کہیں ایمان سے نہ نکل جاؤں، کسی حال میں بولنے کے لیے ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ بولے تو دار اس کا ہم جو ہے تجزیہ کریں، اور تجزیہ کر کے پھر اس کو اور زیادہ اچھے انداز سے سمجھا پائیں، لیکن وہ بولتے ہیں بس میں تو ایسا معلوم ہے میں کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، ایمان سے نکل گیا۔ یہ اسی طرح گناہ کے جو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کائنات کا جو ایک نظام قائم فرمایا اور انسان کو پیدا کیا نا، تو پہلے ہی دن سے یہ تو ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اور دشمن بننے کے بعد وہیں اسی وقت تو اللہ کے سامنے ہی اس نے بڑے دھڑلے کے ساتھ دعویٰ کر دیا تھا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم ومن شمائلہم، کہ ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، دائیں بائیں، گویا میں ان پر حملہ کروں گا، اور فلا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو وہ تو قسم کھا چکا ہے، اور وہ اپنے مشن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، فعال، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے کام سے غافل नहीं बैठता एक सेकंड के लिए। आदमी का बच्चा पैदा होता है, वहां से लेकर आदमी को मौत आती है, मौत के वक्त भी जो हालात तारी होते हैं वहां भी उसकी कोशिश ये होती है कि मैं उसके ईमान को खत्म करूं। गोया पहले दिन से लेकर आखिरी घड़ी तक बस वो लगा हुआ। और ऐसा नहीं कि किसी को बख्शता हो, एक एक फर्दे इंसानी को भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान आकर उसके दिल को टटोलता है, छूता है। वो टटोलता है जरा उसका जायजा लेने के लिए, देखने के लिए। तो वो बच्चा उसकी वजह से रोता है। ये जो बच्चा रोता है ना पैदाइश के वक्त, उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मरियम व इब्नुहा, सिवाय हजरत मरियम उनके बेटे हजरत ईसा के। तुझे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दुआ की थी, अल इन्नी उई दुहाबिक व ज़ुर्रियतहा मिन अश्शैतानिर रजीम, उसकी वजह से वो महफूज रहे। तो बहरहाल मैं तो ये बतलाना चाहता हूँ कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होती हर बच्चा रोता है, आता है हर बच्चे के पास, पैदा होते ही वो पहुंच गया। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो पहुंच जाता है फौरी तौर पर, और पहुंच कर वो जो है उसके दिल को टटोलता है, जायजा लेता है दिल का, क्योंकि इसी पर आगे जाकर उसको मैं एक चोर होता है ना, चोर तो चोरी करने का जब इरादा करता है तो ऐसा तो है कि जहाँ चोरी करनी है रात को वहाँ पहले ही पहुंच गया, नहीं, वो दो तीन दिन पहले से आके बाकायदा जो है ना वो जायजे लेता है, मकान कैसा है, उसके हुदूद अरबा क्या हैं, किधर दरवाजे हैं, किधर खिड़कियाँ हैं, पड़ोस में कौन है, और उसके बाद फिर वो अपना दावा आजमाता है। तो शैतान भी जो है वह इंसान के ऊपर जो अपना दावा आजमाता है, तो पहले ही दिन से बच्चे को पैदा होते ही उसने आकर, हालांकि बच्चा इंसान का जो है छोटा बच्चा अभी वो शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ नहीं। एक बात और सुन लीजिए, शैतान को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान का इन शैतान लकुम इन शैतान इंसान अदुबूमी अल्लाह तत्तबियु खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुबूमुबीन, जगह जगह कि शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, ये तुम्हारा खुलावा कौन कहता है? अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह, एक जगह नहीं कई जगहों पर बहुत ताकीद के साथ हमको कहा है कि ये तुम्हारा खुलावा दुश्मन है, इससे बच के रहियो। दुनिया की कोई बड़ी हुकूमत, आज दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत अमेरिका की, कि अमेरिका की हुकूमत अगर अपने शहरियों को ये आगाह करें कि फलाना आदमी तुम्हारा दुश्मन है, उससे बच कर के रहियो, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी हुकूमत जो इतने सारे असबाब व वसाइल की मालिक है, वो अपने शहरियों को उसके शर से बचने की ताकीद करती है, उससे उस दुश्मन की खतरनाकी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अल्लाह ताला जो है हमें आगाह फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए हमें उससे कितना बचना चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है हमारी जिंदगियों का जो हाल है उसके पेश नज़र, कि हमें किसी से खतरा हो तो हो लेकिन शैतान से तो कोई खतरा है ही नहीं। उसकी तरफ से जितने हम मुतमईन हैं शायद किसी और चीज की तरफ से इतने मुतमईन हैं, कोई ख्याल ही नहीं आता। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर चीज में, इंसान की हर चीज में वो अपना हिस्सा। मैंने कहा पैदाइश से पहले ही मर्द जब अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है क्या दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिन शैतान व जन्निबी शैतान मिम्मा रज़क़तना, बिस्मिल्लाह के साथ। ये बुखारी में ये दुआ मौजूद है, बुखारी शरीफ, बल्कि इमाम बुखारी ने जहाँ बिस्मिल्लाह वाला ये दुआ का तुम्हारा इसी रिवायत को पेश किया है और आमाल के साथ भी जोड़ने के लिए। तो बहरहाल ये गोया लिखा है कि आदमी जब अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है तो अगर उसने दुआ न पढ़ी हो, अल्लाह का नाम न लिया हो, तो शैतान उसकी शर्म के काह के साथ लिपट जाता है और वो भी सोहबत में उसके साथ क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है। वहां से शुरुआत हुई। बच्चा अभी तो वजूद में आया नहीं। सोहबत के दौरान जब इंजाल होता है, मादे मनविया आदमी के जो है शर्मगाह से निकलकर औरत की रहम की तरफ मुंतकिल होता है, उस वक्त भी दुआ सिखलाई गई है ना, अल्लाहुम्म ला तजअल लिश्शैतान फीमा रज़क़तना नसीबा। अपने औलाद को अगर नेक बनाना चाहते हैं तो ये सब एहतियातें पहले ही दिन से हमें बरतनी पड़ेगी कि अल्लाह तू इस सोहबत के नतीजे में जो औलाद हमें अता फरमाएगा उसमें शैतान का हिस्सा मत रखियो। क्योंकि वो वक्त होता है कि आदमी अपनी बीवी के साथ सोहबत में मशगूल होता है और हमें ये दुआ तलकीन की गई है तो उलमा ने लिखा है कि उस वक्त ये दुआ जबान से नहीं बल्कि दिल से उसका तसव्वुर करे। मैं तो ये बतलाना चाहता हूँ कि देखो कितनी हमें बचाव की तदबीरें बताई गई हैं। ये तो हाँ हाल हुआ बच्चे का, फिर ये बच्चा जब पैदा होता है, अब पैदाइश का मरहला तो उसके बाद आया, पैदा होकर बाहर आता है, एक बात याद रहे, ये जो शैतान का पूरा कारोबार जो है ना वो वसवसों पर चलता है। उसको जो हथियार अल्लाह ताला ने दिया है इंसान को गुमराह करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वसवसा और कुछ नहीं। वसवसा क्या है? वसवसा यूं समझिए सरगोशी, काना फूसी। शैतान आकर के आपके दिल में बातें करता है, जैसे कोई दोस्त आकर के चुपके से कान में कोई बात करे, जो बात की जाए सरगोशी के अंदाज में, उसको वसवसे से ताबीर करते हैं। तो ये यही एक हथियार, उसके पास दूसरी कोई कुदरत नहीं है। वो कोई कभी रिवाल्वर लेकर किसी आदमी के पास आया हो और कहा हो चल सिनेमा देखने के लिए, चल जिना कर वरना अभी गोली मार के मार देता हूं, आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि शैतान ने एक इंसान तो दूसरे इंसान को ऐसी धमकी दे सकता है, लेकिन शैतान ने आकर ऐसी धमकी दी हो कि भाई चल तू जिना कर वरना अभी डंडे से तेरा सर फाड़ दूंगा, चल तू गुनाह का काम कर वरना अभी छोरे से जो है तेरा गला काट दूंगा, नहीं, ऐसी कोई कुदरत अल्लाह ताला ने शैतान को दी नहीं, बस सिर्फ एक ही कुदरत दी, कौन सी, वसवसा सरगोशी। और ये ऐसी अजीब गरीब चीज है कि शैतान का पूरा कारोबार उसी से चलता है। और देखिए कुरान पाक में मुआवज़तैन दो सूरतें अल्लाह ताला ने ऐसी उतारी हैं जिसमें जिन चीज़ों से इंसान को नुकसान पहुंच सकता था उनसे पनाह हासिल करने का तरीका बताया गया है। पहली सूरत सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। चार चीजों से पनाह मांगी गई और पनाह हासिल करने के लिए अल्लाह की एक सिफत को इस्तेमाल किया गया, औज़ु बिरब्बिल फलक, रब्बुल फलक। पनाह हासिल करने के लिए अल्लाह की एक सिफत, सिफत रब्बुल फलक, ये एक सिफाती नाम दी। और चार चीजों, दूसरी सूरत सूरह वन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। अल्लाह के तीन सिफाती नाम जिक्र किए गए, तीन सिफतें, रब्बुन्नास रुबूबियत, मलिकिन्नास मुलुकियत, इलाहिन्नास उलूहियत। अल्लाह की इन तीन सिफात के बाद पनाह मांगी गई एक चीज से, फकत एक चीज, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। उस वसवसा डालने वाला और जो वसवसा डाल के पीछे हट जाता है उसके शर से पना चाहता हूं, कौन वो है, अल्लज़ी युवस्वसु फी सुदूरिन्नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नते वन्नास, जो शयातीन में से हो या इंसान। है पना एक ही चीज से, वसवसे से पना मांगना। तो वसवसे से पनाह पूरी एक सूरत में एक ही चीज, और वहां अल्लाह की तीन सिफात का तज़किरा किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वसवसा कितना मुजिर होगा और वो कितना खतरनाक होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये सूरत नाजिल फरमाकर शैतान के शर से पना मांगने का तरीका बताया। और जगह जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आजकल की भाषा में यूं कह सकते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम दे दिया, एंटीवायरस प्रोग्राम। ये शैतान, ये हदीस की किताबों में किताबुल अदिया या किताबुल दावात मुस्तकिल, और उन किताबुल दावात के अंदर, मिश्कात के अंदर आपने पढ़ा होगा बाबुल मौवजात, कहाँ कहाँ आदमी खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े साथ, ताकि शैतान खाने में साथ में शरीक न हो, कोई चीज पिए तो, घर में दाखिल हो तो, निकले तो, कजाए हाजत के लिए बैतुल खला में जावे तो, आदमी बैतुल खला में जाता, वहां भी ये नहीं छोड़ता, वहां भी अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के और दुआ पढ़ के नहीं गया है तो आदमी की, इंसान की शर्मगाहों से वो खेलता। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि जगह ये ऐसा दुश्मन है कि कहीं हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं, बस लगा हुआ है हर चीज में। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि वो बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि वो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही शैतान पहुंचकर उसके दिल को टटोलता है। देखो अल्लाह की कुदरत, ये बच्चा माँ की पेट में था, माँ माँ का भी दिल है, और बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है और उसमें रूह पड़ चुकी है, तो रूह पड़ चुकने के बाद उसका भी दिल है और वहां काम कर रहा है, लेकिन जब तक के ये बच्चा माँ के पेट में है वहां तक अल्लाह ताला ने शैतान को ये कुदरत नहीं दी कि वो उसके दिल पर कोई असर डाल सके। क्यों? इसलिए कि ये बच्चा इस आलम की चीज नहीं है, अभी दुनिया में आया नहीं, इस आलम की चीज नहीं है। हाँ, जहां पैदा हुआ माँ के पेट से बाहर आया तो अब ये इस आलम की एक चीज बन गया, और इस आलम की बना फौरन शैतान को उस पर क्या हासिल हो गई? कुदरत। और शैतान भी इतना एक्टिव है कि बस बच्चा पैदा हुआ और पहुंच गया और आकर उसके दिल को टटोल के गया, उसका जायजा ले लिया, सर्वे कर लिया उसने, एक नया मैदान मेहनत का मेरे पास आ गया है, शैतान ये देखने के लिए आया है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि भाई देखो, आपके बस्ती में कोई डॉक्टर नया आया है और उसने कोई शिफा खाना, कोई क्लिनिक शुरू की, तो दवा बनाने वाली कंपनियों के एजेंटों को पता चलेगा तो वो फौरन पहुंच जाएंगे। क्यों? लेकिन वो जानते हैं कि भाई हमारी मेहनत का मैदान यही है। तो इंसान का बच्चा जब दुनिया के अंदर पे आया शैतान, हालांकि ये बच्चा अभी नामुकल्लफ, गैर मुकल्लफ, शरीयत के अहकाम का पाबंद नहीं जब तक बालिग नहीं हुआ, अभी तो इसमें होश आवाज भी नहीं, अकल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी शर्म। और हजरत अंबिया के जरिए से अल्लाह ताला ने जो हिदायत का निजाम कायम किया है वो उसका तोड़ है शैतान की सारी इसका। चुनांचे इसी मौके पर शरीयत ने ये हुक्म दिया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको जो है माँ के पेट से जिन आलाइशों को लेकर के आया है उसको धो धुला कर, यानी उसको गुसल देकर, उसके दाहने कान में अजान और बाएं कान में इकामत के कलिमात कहे, ये काय को कहलवाए अजान और इकामत के? हालांकि ये बच्चा कुछ समझता है, हमारी जिंदगियां गुजर गई अजान और इकामत सुनते सुनते, तो भी बहुत से वो हैं जिनको अजान और इकामत का मतलब मालूम नहीं, तो इस बच्चे को क्या मालूम होगा, लेकिन फिर भी हमें तालीम दी गई कि इसके कान, क्यों? वो जो शैतान ने आकर टटोल कर अपना असर डालना चाहा था, बीज डालना चाहा था, उसके असरात को खत्म करने का। तो बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूं कि शैतान का सारा कारोबार काय के ऊपर है? वसवसे के ऊपर, ये वसवसा ही से सब। और वसवसा की हकीकत सिर्फ इतनी, वो हमारे दिल से बातें करता है, दिल में जो बात ख्याल आते हैं वो ख्याल क्या है, वो शैतान की बातें हैं जो दिल तक पहुंच रही है। तो बहरहाल ये वसवसा जो है वही, और इस वसवसे के जरिए से ही वो गुनाहों में, अब एक वसवसा तो शैतान डालता है मिनल जिन्नते वन्नास, इंसान भी वसों से डाल, वो बुरी सोहबत, बुरे दोस्त जो होते हैं। एक लड़का है नया, नेक साले लड़का, अब वो पहुंच गया टोली में, किसकी, बदमाशों की टोली में, उनकी सोहबत में। तो जब पहुंच गया है ना, तो पहले ही दिन से वो सारे मराहिल तय करेगा नहीं, पहले दिन जब वो उनके साथ बैठेगा उनकी बात है, तो उसको वहशत होगी, क्या बात है। उनमें का कोई कहेगा चलो जरा उधर घूमने के लिए जाते हैं, बात हर कैसी बात है, नहीं मानेगा। सिनेमा देखने का तो दूर की बात रही, समझा, जिना करना शराब पीना तो बहुत दूर की बात रही, छोटे छोटे गुनाह, लेकिन फिर जब तक वो है, और वो क्या कहते हैं, चलने मजा आ जाएगा। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, आज कहा, कल कहा, दो तीन चार दिन तक जब मुसलसल कान में ये बात पड़ती रहेगी, तो अब उसका दिल उसकी तरफ क्या होगा, ये है वसवसा, ये इंसानी वसवसा, ये मिनल जिन्नते वरना, ये नास, लोगों की तरफ से जो वसवसा, इसीलिए बुरी सोहबत से अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा, इंसान के, एक इंसान के ख्यालात, उसकी सोहबत दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। हमारे एक दोस्त ने सुनाया कि एक मौलवी साहब फारिग होकर के आए किसी मदरसे से, और एक मदरसे में तदरीस के लिए उनका तकर्र हुआ, मेहनत से पढ़ा था, तो उनके हौसले, तालिब इल्म मेहनत से पढ़ कर के आता है तो उसके हौसले भी बुलंद होते हैं, यूं करूंगा, इस तरह पे आ पढ़ाऊंगा, हुआ तो तदरीस के लिए जब तकर्र हुआ, बड़े हौसले थे, मैं तलबा पर यूं मेहनत करूंगा, उनको इस तरह सिखाऊंगा, अपना तरह सिखाऊंगा। तो वहां मदरसे में आकर अपनी मेहनत शुरू भी कर दी। एक सुबह की चाय एक दूसरे मौल साहब जो पहले से वहां मुदर्रिस थे उनके साथ पीती थे, बस 24 घंटे में एक वक्त उन मौल साहब की सोहबत का, कौन सा, सुबह की चाय उनके साथ पी जाती थी। तो वो कह रहे, अरे क्या तू करे, कैसी बातें करता है, मोहतिम तुमको कौन सा अवार्ड दे देगा, मोहतमिन तुम्हारे कौन से तनख्वाह बढ़ा देगा, तुमको कौन सी उससे मिलने वाली है। वह रोजाना इस तरह की एक बात, जैसे जो मेहनती उस्ताद होता है, दूसरे जो पहले से ऐसे बद जो मेहनत न करने वाले, वो इसी तरह। तो हकीकत क्या हुई, वो मौल साहब कहते हैं चंद दिनों के बाद मेरा हाल ये हो गया कि सारे हौसले पस्त हो गए और मेरे दिल के अंदर जो एक हिम्मत थी वो सब खत्म हो गई कि मैं मेहनत करूँगा, गैर इख्तियारी तौर। इसीलिए मैं अपने तलबा से कहता हूँ कि ये बुरा माहौल या इसकी बुरे ख्यालात, बुरी सोच, कोई वो जो है दुनिया के किसी बाजार में गुंडों के मजलिस में मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमारे मदरसों के अंदर भी ये सब छुपे हुए हैं, ऐसी ख्यालात लिए हुए, ऐसी गलत सोच लिए हुए, ऐसी जो है राह रास्त से हटाने वाली बातें करने वाले, अपने आप को इससे भी बचाने की जरूरत। खैर ये तो एक जिंदगी बात हो गई, तो मैं ये अर्ज करना चाहता था वसवसे की हकीकत, वसवसे की, ये वसवसा क्या है, एक चीज बार बार आपको जहन में, आपके कान में, आपके दिलो दिमाग पर डाली जा रही है, तो वो आखिर क्या होगी, असर करेगी। वो गोबेल्स के मुतालिक है ना, वो हिटलर का जो था वजीर इत्तिलात था, पता नहीं क्या था, वो कहा करता था कि एक झूठ बार बार आप बोलेंगे तो दुनिया फिर उसको सच समझेगी, समझा कि नहीं। वाकया यही है, एक झूठ का बार बार अगर तकरार किया जाएगा तो एक वक्त आएगा कि दुनिया उस झूठ को सच समझेगी, तो एक बात बार बार कहेंगे, मुझे खूब याद है, तो आज से यूं समझें कि 45 साल पहले की बात, शुरू हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रमज़ान गुजारने के लिए जाते थे, पढ़ने पढ़ा, देवबंद में भी 2 साल पढ़ा, उसके बाद रमज़ान हज़रत के यहाँ गुजारने। तो पहले पहल वो दिल्ली के आसपास, ट्रेन दिल्ली और दिल्ली से आगे सहारनपुर, तो यहाँ से जो भी ट्रेन जावे मथुरा के बाद से कोई दीवार कच्ची पक्की पुरानी नई ऐसी नहीं जिसके ऊपर वो मैरिज सेंटर उस ज़माने में शुरू हुए, तो मैरिज सेंटर वाले ने ये न लिखा हो रिश्ते ही रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते, मिल तो लीजिए। मुझे खूब याद है कि पहली मर्तबा जब इस जुमले पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल में एक नफरत का जज्बा, क्या कभी इसका तस्वीर भी नहीं कर सकते थे कि भाई इस तरह की शक्लें भी जो है रिश्तों के लिए पैदा की जा सकती। पुराने लोग इसका तस्वीर कर सकते हैं, तो अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया पहुंच गई, हम तो जानते भी नहीं इन चीजों को। तो बहरहाल कहने का हासिल यह कि पहली मर्तबा जब पढ़ा तो दिल ने नफरत की और एकदम वहशत सी हुई, लेकिन जो जो ट्रेंड बढ़ती जा रही है, जो दीवार है हर दीवार पर यही रिश्ते ही रिश्ते, मिल तो लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है। ये जुमला जो बार बार पढ़ता रहा मुझे खूब याद है कि दिल्ली आने तक वो जो नफरत थी वो खत्म हो गई, तो जुमला पढ़कर दिल में एक वहशत जो पैदा हुई थी दूर हो गई। बस ये मैं मिसाल देना चाहता हूं, काई की वसवसे कोई भी बुरी बात इस तरह बार बार आएगी इसी माहौल की वजह से, सोहबत की वजह से, चाहे वो इंसान या शैतान बार बार ये चीज डालेगा। ये वसवसा ही बहुत बड़ा हथियार है शैतान का, तो अब ये उसी के जरिए से वो अपना काम करता है। ये वसाविस और ख्यालात की वजह से लोग परेशान होते हैं। इस सिलसिले में उसूली तौर पर, इजमाली तौर पर चंद बातें, रात तो शायद पूरी ना हो बात, तो जो ख्यालात आते हैं जिनकी वजह से आम तौर पर एक दीनदार आदमी अपने दिल और दिमाग में तकलीफ महसूस करता है, तो वो वसाविस तीन किस्म के बतलाए गए हैं। पहली किस्म तो वो जो ईमानियात से मुताल्लिक, ईमानियात से मुताल्लिक का मतलब ये है कि आदमी के दिल में कोई वसवसा आया एक किसी जवान के दिल कि भाई शैतानी अल्लाह ताला का वजूद है भी या नहीं, एक आदमी एक दिल में ख्याल आया। अब बार बार ये ख्याल आ रहा हालांकि उसके दिल में ईमान है, ये तो खाली एक वसवसे का दर्जा है जो दिल में आ, उसकी वजह से वो नौजवान क्या समझता है नऊज़ु बिल्लाह में ईमान से निकलना। अज़लुल अवाज़िल हौला क़ल्बि ताई व हवला हिब्बत मिनहु फी सौदाई, मुतनबी कह गया है कि दोस्तों की मोहब्बत दिल की गहराई में है और मलामत करने वालों की मलामत जो है वो आसपास घूमती है। तो ये वसाविस जो है अंदर नहीं, वो आसपास घूम रहे हैं, ईमान तो दिल में है, अब इन वसाविस की वजह से वो परेशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के मुताल्लिक, नऊज़ु बिल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं भी या नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है, ऐसा ख्याल आया, खाली वसवसा गैर इख्तियारी तौर पर दिल में ख्याल आया। तो ईमानियात जो भी जिन जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी करार दिया गया, मुख्तसर तौर पर क्या तुमना बिल्लाह वल यौम आखिर, बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौम आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला वल बाअथ बादल मौत, वो जो छह सात चीजों का तज़किरा कुरान में भी है, हदीस जिब्रील में भी है, तो वो और फिर उससे और फिर फरूई चीजें निकाली गई। तो ईमानियात से मुताल्लिक दिल में जो वसवसे आते हैं, एक किस्म तो वो, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ पूछ गए और बता भी गए, सारा हल मौजूद है अहादीस के अंदर। ख्यालात तो जो ईमानियात से मुताल्लिक ख्यालात आते हैं ऐसे वसवसे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जा नासुम मिन असाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसालू इन्ना नजदु फी अनफुसिना मा यताआज़मु अहदुना अन यतकल्लम बिही قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان। इसी तरह ये अबू हजरत अबू हुरैरा की बात, इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मुस्लिम के अंदर है कि सोयल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल वसवसते फकाला तिलक महजुल ईमान, के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वसवसे के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया ये तो खालिस ईमान है। या वो जो पहली रिवायत तर्जमा कर दूं, सब नहीं जानेंगे कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कुछ सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्ना नजेदु फी अनफुसेना मा यतआज़मु अहदुना अन यतकल्लम बिही, हम अपने दिलों में कुछ ऐसी ख्यालात वसाविस महसूस करते हैं कि जिनको अपनी जबान पर लाना हम में से हर एक को बहुत भारी मालूम होता है, दोबारा हम जबान पर नहीं ला सकते। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवकद वजद तुम हो, वाकई है ऐसा, ऐसा है वाकई। कालू नाम कहा, काल जाले का माजूर, ये तो खालिस ईमान है। अब ये खालिस ईमान का क्या मतलब, दो मतलब। एक तो वो हमारे सैयद ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमा, एक आदमी ने आकर इस तरह का सवाल किया तो कहा कि भाई देखो चोर है ना, चोर उसी घर में जाता है जहां दौलत हो, उसको तो माल लेना है ना, जहां माल होगा वहां जाएगा, माल जहां नहीं होगा वहां काई को जाएगा। तो शैतान जो है वो ईमान का चोर है, तो जिसके दिल में ईमान की दौलत होगी वहां वो आएगा, वसवसा डालेगा। तो ये वसवसा आना ये दलील है इस बात की कि तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है। इस वसवसे की आने की वजह से ये मत समझो कि ईमान खत्म हो गया, बल्कि तो ये तो ईमान की दलील है। एक इसकी तौजीह, हमारे एक लतीफा याद आ गया, हमारे हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह वाकया बयान किया करते थे जिस जमाने में शुरू तदरीस में आप वहां मजाहिर में थे। एक शिया आया था वहां और कई रोज वहां मजाहिर के मेहमान खाने में रहा, बहुत सारे मसाइल के सिलसिले में गुफ्तगू, आजादी से पहले का किस्सा है, जिस जमाने में कादियानियत भी खूब फैल रही थी, उसका बड़ा जोर था। तो कहा उसी दौरान गुफ्तगू वो शिया हजरत फरमाते उसने मुझसे कहा कि देखो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई शिया कादियानी हुआ, जितने भी कादियानी बने सब सुन्नी बने। ये उसने सवाल किया तो हजरत फरमाते मैंने जवाब में कहा शैतान बेवकूफ थोड़ा है, वो काय को मेहनत करेगा शिया के ऊपर, शिया के पास तो पहले से ईमान नहीं है, उसको क्या जरूरत है उसको मेहनत करके उसको शिया से कादियानी बनाने की, वो तो इसलिए करता है कि ईमान छीन है, सुन्नी के पास ईमान मौजूद है तो उस पर मेहनत करके वो उसको कादियानी बनाने की कोशिश करता है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये कि वो हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि शैतान का आकर वसवसा डालना इसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वसवसे का आना ये दलील है कि ईमान मौजूद है। काफिर को कोई वसवसा, वसवसा क्या, जिन चीजों का ऐसा हमें ख्याल हो जिसको, वो तो बाकायदा अपनी जबान से इन चीजों को बोलता है, करता है अपने अमल से, उसको कोई बुरा नहीं लगता बल्कि वो खुश है, उस पर इतरा रहा है, ये तो ईमान है जो हमको ऐसा ख्याल आने पर भी घबराहट में डाल देता है। तो बहरहाल एक तो उसकी तौजीह ये की, दूसरी बहरहाल कि भाई इन ख्यालात के आने, वही जो अभी मैंने कहा उसकी अंदर अंदर आ गया जवाब ये कि इन ख्यालात के आने पर गमगीन होना, मायताजमो अहद होना, इस तरह के वसवसों के आने को इतना भारी समझना कि अपनी जबान से उसका इजहार गवारा न हो, ये खुद दलील इकाई की ईमान की। तुम्हारे दिल में ईमान है तब तो तुम इसको बुरा समझ रहे हो, ईमान ना होता तो काई को बुरा समझते। जैसा अभी मैंने कहा ना कि काफिर को ऐसे वसवसे का वहां तो बाकायदा और अमली तौर पर सब कुछ मौजूद है तो भी उसको बुरा नहीं लगता। तो बहरहाल ये इसको बुरा समझना, भारी समझना, ये खुद दलील है काई की ईमान की। एक तो गया उसकी ये हुदूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में ये फरमाया, दूसरा दूसरी किस्म के साथ भी ताल्लुक रखता है, पहली किस्म के साथ भी वो रिवायत ताल्लुक रखती है, इसलिए वो दूसरी किस्म की जिम्ना में उसको भी बयान करूंगा। अलबत्ता एक बात और है, वो ये है कि इस तरह के वसाविस जो हैं आते हैं, तो इन वसाविस के आने के भी कुछ असबाब होते हैं। आदमी को चाहिए कि अपने आप को ऐसे असबाब से दूर रखने की कोशिश करें। मैं कहा करता हूं भाई, जहां मच्छर ज्यादा होते हैं वो लोग असर के वक्त से घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं, भाई खुली रहेगी ना तो मच्छर आ जाएंगे, रात को सोने नहीं देंगे, समझा कि नहीं। तो अब आप जो है अपने दिलो दिमाग की खिड़कियां इन चीजों के लिए खोले रखेंगे, इन मच्छरों को घुसने का मौका मिलेगा। वो क्या, ये आजकल जो अखबारात हैं या आजकल जितने मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं मीडिया के अंदर, तो उनके अंदर बड़ी तादाद वो है जिसमें गोया वो प्रोग्राम देने वालों की कोशिश ये होती है कि ईमान, आदमी के ईमान के अंदर शकूक और शुबहात पैदा किए जाएं। अब लोग जो है ना वो क्या कहते थे, वो पहले नवभारत वो एक प्रोग्राम आता था टीवी में, पहले सीरियल आती थी महाभारत, या और इसी तरीके से रामायण पहले सुना पता नहीं क्या है। तो बारह लोग मुसलमान भी उसको देख रहे हैं, भाई आप महाभारत को देखेंगे तो उसके बाद बस ऐसे बुरे ख्याल नहीं आएंगे तो क्या आएगा। लोग हमारे यहाँ जैसे अखबार आते हैं, क्या आपने देखा होगा ये गुजराती अखबार, उनकी उनके इजाफे जिसको गुजराती में पूर्ति कहते हैं, पूर्ति जायद हिस्सा, एक तो अखबार वाला रोजाना का हिस्सा, उसमें एक जायद हिस्सा पूर्ति, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, हैं सप्लीमेंट, सप्लीमेंट अलग होता है इसका। तो बाज तो अखबारात वो होते हैं जिनके खाली इतवार के रोज ही इजाफा होता है पूर्ति, बाज हर दिन के अलग अलग मौजू। हमारे यहाँ गुजराती अखबार है वो बुध के रोज उसकी एक पूर्ति आती है धार्मिक, यानी मजहब से मुताल्लिक, उसमें हिंदुओं के मजहब, दिवाली आएगी तो होली आएगी तो ये होली का उनकी देवी है ना उसका ये है। अभी हमारा मुसलमान नौजवान ये अखबार के जब मुताला करने के लिए बैठता है ना तो बस सभी पढ़ लेता है, उसमें ये पूर्ति में जो आया उसको हमारे इदारों ने जो इस्लामियात और ईमानियात से मुताल्लिक चीजें शाये की और जो मुफ्त पहुंचाई गई है उसके घर में, इसलिए कि हमारे अमूमन इदारे जितने हैं इशात का काम करने वाले मदरसों के मातहत और इदारों के मातहत ऐसी दीनियात की चीज़ें शाये होती हैं और मुफ्त। आप किसी जलसे में गए, बाहर आदमी खड़ा है, आप नहीं चाहते तो भी ज़बरदस्ती आपके हाथ में थमाई देता है वो रिसाला, है ना, और आपकी अजीब हालत है कि वो रिसाला क्या है वो भी देखते यूं ही जेब में डालेंगे और घर जाकर अलमारी में यूं फेंक देंगे। उस बेचारे ने तो बाकायदा छपवाया, पैसा खर्च किया, आदमी खड़ा करके आप तक पहुंचाया, लेकिन आप उसके अंदर क्या है उसका उन्वान देखने की भी जहमत करते नहीं, ये हमारी गफलत है सर। बारह मैं तो यूं कह रहा कि अब ये उसमें उनकी ये सारी चीजें ऐसी जो है अगड़म बगड़म जो ईमानियात के खिलाफ होती हैं सारी उनके अवहम, अब ये पढ़ता है और पढ़ करके बाकायदा जाहिर पड़ेगा तो बस वैसे आएंगे ईमानियात से मुताल्लिक। शरीयत इसकी कहाँ इजाजत देती है, आपने मिश्कात शरीफ में रिवायत पढ़ी होगी, वहां तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात के कुछ औराक लेकर के आए और अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये तौरात के औराक हैं, और पढ़ना शुरू कर दिया पूछे बगैर ही, इतना कहकर पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर गुस्से से सुर्ख हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ने में मशगूल थे, उनको पता नहीं। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला ने ये मंजर देख रहे थे, उन्होंने कहा सकेलत का उम्मो का या इब्न अल खत्ताब अमा तरा माँ बे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उमर तुम्हारी माँ तुम्हें रोए यानी तुम्हें मौत आवे देखते नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का क्या हाल है। देखा हुजूर फौरन वो रखा और औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिही व غضب رسول رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ کلمے دہرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. آپ نے فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں حضرت موسیٰ آویں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو بھی کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اگر وہ حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسیعہ الا اتباعی لو کان موسیٰ حیا، یہ اندر مشکات کی روایت میں موجود ہے. حالانکہ وہ تو اوراق کائی کے تھے، توریت کے، جیسی بھی ہو محرف تحریف شدہ، لیکن ہے تو آسمانی کتاب، لیکن اس کی اجازت دی نہیں گئی. اور یہاں ہمارا حال یہ ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جو آیا پڑھ لیا نہیں. حضرت امام بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کے شروع میں، مقدمے میں، جہاں حدیث افتراق امت پر بحث کی ہے، وہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد. ایک آدمی آیا جو بد عقیدہ، جن کو لوگ جانتے تھے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں، گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ آ کر بیٹھا. حضرت اپنے گھر میں تھے، کرتا اتارا ہوا تھا، گھر میں ہونے کے دوسرے لوگ بھی تھے. اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف قرآن کی آیت سنا کر چلا جاؤں گا، مجھے جا. کہنے بالکل نہیں، تو جا یہاں سے، تو جا. بہت اب وہ ہٹ نہیں رہا، بھائی میرا کرتا لا، میں چلتا ہوں. لوگوں نے پھر اس کو کہا، بھائی تو کائے کو ان کو یہاں سے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے. لوگ وہاں موجود لوگوں نے اس کو وہاں سے سمجھا بجھا کر کے نکالا. اس کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا، حضرت اس نے تو ایک ہی بات کہی تھی کہ قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں اور اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، پھر بھی آپ نے انکار کیا. کہا ہاں، ایک گمراہ آدمی کی زبان سے، ایک بدعقیدہ آدمی کی زبان سے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سن کر میرے دل میں اس کے متعلق کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے جو بعد میں دور نہ ہو، اس لیے میں اس کی زبان سے اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس علم، ہر کس و ناکس سے، قادیانی سے بحث کر رہے ہیں، پنڈت سے بحث کر رہے ہیں. کچھ ہو آپ کے پاس، علم کا بھنڈار ہے اور آپ کے پاس ساری مہارت ہے، تب تو ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چرچوں میں پڑھنا تو بہرحال. ایسے یہ مختلف اسباب بھی ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اعتقادیات کے متعلق جو ہے وساوس سے اپنے آپ کو بچانے کے. ویسے اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا، اپنا عقیدہ درست ہونے کے باوجود خیال آئے تو اس کی وجہ سے ایمان پر کوئی اثر پڑتا نہیں. یہ تو ایک قسم ہوئی، بعد میں کل انشاءاللہ دوسری وضاحت کریں گے.